लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते हैं जो सदैव प्रेरितिक कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कार्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, एवेंजेली गौडियम का तीसरा अध्याय सुसमाचार की घोषणा का जिक्र करता है। ख्रिस्तियों के रूप में हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने हेतु बुलाए गए हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में प्रवचन की महत्वपूर्णता पर जिक्र करते हुए कहा कि धर्म ग्रंथ के पाठों में हमारे लिए विशेष संदेश निहित होते हैं। उपदेशक जो ईश्वर के वचनों को खुले हृदय से सुनने हेतु तैयार नहीं रहता, यदि वह उसे अपने जीवन का स्पर्श होने नहीं देता, यदि वह उनसे चुनौती प्राप्त नहीं करता, प्रेरणा नहीं लेता और यदि वह अपना समय उन वचनों को लेते हुए प्रार्थना में व्यतीत नहीं करता, तो वह वास्तव में एक झूठा नबी, एक छिछला उपदेशक होकर रह जाता है। अतः उपदेशक को चाहिए कि वह ईश वचन को एकाग्रचितता में ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए उसे अपने में आत्मसात करे। श्रोताओ, धर्म ग्रंथ का आध्यात्मिक पठन पाठन करना हमारे लिए एक विशेष साधन है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर के वचनों को सुनते और इस बात को जानते हैं कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। इस तरह हम अपने को पवित्र आत्मा से परिवर्तित होने देते हैं। इसे हम लेक्सियो डिवीना कहते हैं। यह ईश वचनों को प्रार्थना में मुद्रा में अध्ययन करते हुए अपने को आलोकित और नवीन करना है। धर्म ग्रंथ का यह प्रार्थनामय अध्ययन उपदेशक के अध्ययन से अलग नहीं है, जिसे वह ईश्वर के मुख्य संदेश का पता लगाने के लिए करता है। इसके विपरीत इसकी शुरुआत उस अध्ययन से होनी चाहिए और उसके बाद हमें इस तथ्य पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि वह संदेश हमारे लिए क्या कहता है। धर्म ग्रंथ के पद का आध्यात्मिक पठन पाठन इसके शाब्दिक अर्थ से होना है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम सहज ही उस पद के अनुसार उन बातों को कह सकते हैं जो हमारे लिए सहज लगती हैं, जो हमारे पिछले निर्णयों की पुष्टि के लिए उपयोगी है, जो हमारे विचारों के अनुकूल है। ऐसा होना अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी पवित्र चीज का उपयोग करना इस भ्रम को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने के समान होगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी यहाँ तक कि शैतान भी अपने को एक ज्योतिमय दूत के वेश में प्रस्तुत करता है। श्रोताओं, एक साथ मिलकर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के दौरान यह पूछना हमारे लिए अच्छा है, उदाहरण के लिए, प्रभु धर्म ग्रंथ का यह पद मुझे क्या कहता है, मेरे जीवन से संबंधित वह कौन सी चीज है जिसे आप इस पद के अनुरूप बदलना चाहते हैं, इस पद में मुझे कौन सी बात विचलित करती है, मैं इस पद पर क्यों रुचि नहीं लेता हूँ, या शायद मैं इस पद में कौन सी बात को सुंदर पाता हूँ, इस बात में कौन सी चीज है जो मुझे प्रभावित करती है, मुझे क्या मोहित करता है, यह क्यों मुझे आकर्षित करता है। जब हम ईश्वर को सुनने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए परीक्षाएं आएंगी। उनमें से एक यह होगा कि हम उसे भार के रूप में या उसे अपने को विचलित करता हुआ पाएंगे और हमें अपने को उससे दूर करने की चाह होगी। एक दूसरी सामान्य परीक्षा हमारे लिए यह होगी जहां हम इस बात को सोचने में बाध्य होंगे कि यह दूसरों के लिए क्या अर्थ रखती है और इस तरह हम इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने से अपने को दूर करने की कोशिश करेंगे। यह ऐसा भी हो सकता है कि हम बहाना बनाते हुए इसके स्पष्ट अर्थ को अपने जीवन में कम करने की कोशिश करेंगे या हम अपने में यह आश्चर्य करेंगे कि ईश्वर हमसे इतना अधिक मांग करते हैं। वे हमें एक निर्णय लेने को कहते हैं जिसके लिए हम अब तक तैयार नहीं हैं। यह बहुत से लोगों को इस बात की ओर अग्रसर करता है कि वे ईश्वर के वचनों से मिलने का आनंद लेना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका अर्थ इस बात को भूल जाना होगा कि हमारे पिता ईश्वर से अधिक धैर्यवान कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो हमें अच्छी तरह समझता और स्वेच्छा से हमारा इंतजार करता है। वे हमें सदैव एक कदम लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो वे हमसे पूर्ण जवाब की मांग नहीं करते हैं। वे हमसे सिर्फ इस बात की मांग करते हैं कि हम अपने जीवन की ओर निष्ठापूर्वक निगाहें फेरे और अपने को ईमानदारीपूर्ण ढंग से उनके सामने प्रस्तुत करें, साथ ही उन चीजों की मांग करते हुए अपने में निरंतर बढ़ने की चाह रखें जिन्हें हम अपने में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्रोताओं, उपदेशक को यह भी चाहिए कि वह अपने कान लोगों के लिए खुला रखें और इस बात का पता लगाएं कि वे कौन सी चीजें हैं जिसे विश्वासी सुनने की चाह रखते हैं। एक उपदेशक को ईश्वर के वचनों पर चिंतन करने के साथ साथ लोगों के जीवन के बारे में भी चिंतन करना है। इस भांति वह लोगों के चाहतों के बारे, उनकी समृद्धि और खामियों, प्रार्थना करने के तरीकों, प्रेम करने, जीवन जीने के तरीकों और दुनिया के बारे में जानता है। लोगों के जीवन में ध्यान देना, उनके वास्तविक जीवन से रूबरू होना, उनकी भाषा का उपयोग करना, उनकी निशानियों और चिन्हों से अवगत होना, उनके सवालों का जवाब देना, उसे लोगों के समूहों के बीच अंतर स्थापित करने में मदद करता है। उसे चाहिए कि वह धर्म ग्रंथ के संदेश को मानवीय संदर्भ से संयुक्त करे, एक अनुभव से जो ईश वचन को प्रकाशित करता हो। इस कार्य में चतुराई या लेन देन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह गहरा धार्मिक और प्रेरितिक कार्य है। मूल रूप से यह एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता है जहां हम ईश्वर के संदेश को अपने जीवन की घटनाओं में देखते और समझते हैं। यह कुछ रुचिकर बातों को कहने की खोज करने से कहीं बढ़कर है। हम यहाँ इस बात की महत्वपूर्णता को पाते हैं कि ईश्वर हमें एक विशेष परिस्थिति में क्या कहना चाहते हैं। प्रवचन देने की तैयारी इस भांति एक सुसमाचार की घोषणा हेतु आत्म परीक्षण की प्रक्रिया बनती है, जहां पवित्र आत्मा की ज्योति में हम इस बात को पहचानते हैं कि ईश्वर का बुलावा हमारे लिए ऐतिहासिक परिस्थिति में प्रतिध्वनित होती है। इस परिस्थिति में इसके द्वारा ईश्वर एक विश्वासी को बुलाते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे इस चालीसा काल में आध्यात्मिक उदारता में बढ़ें। उन्होंने 7 मार्च के ट्वीट संदेश में लिखा, चालीसा काल के इस समय में आइए हम आंतरिक उदारता का अभ्यास करें, प्रार्थना में ईश वचन के सामने अपने आप को रखें, ताकि बुराई जो हमें गुलाम बना देती है उसके खिलाफ लाभप्रद संघर्ष मुक्ति की लड़ाई हमारे अंदर हो सके। तुर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप के 1 माह बाद अलेपो के लातिनी पल्ली पुरोहित फादर बहजात कराकास ने प्रभावित लोगों की स्थिति के बारे बतलाया। उन्होंने कहा कि वहां भय और निराशा की स्थिति है। उन्होंने कलीसिया की प्रतिबद्धता की भी चर्चा की। 6 फरवरी को विनाशकारी भूकंप के झटके के 1 महीने बाद अलेपो और अन्य सीरिया शहरों के भूकंप पीड़ितों के बीच भय और निराशा की स्थिति है। अलेपो के पल्ले पुरोहित फादर बहजात कराकाच ने SIR को बतलाया कि भूकंप पीड़ितों को संगठित करने के प्रयास में मलबे के साथ डर और निराशा की स्थिति बनी हुई है। लगभग 13 वर्षों से युद्ध, महामारी और गरीबी से प्रभावित लोगों के दिलों में एक त्वरित पुनर्निर्माण की आशा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, कई लोग जिनके घर पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुए हैं, वे वापस लौटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भूकंप के झटके अब भी आ रहे हैं, जिसके कारण उनके गिरने का डर स्पष्ट है। इस मोड़ पर मनोवैज्ञानिक कारक का अलेपो के निवासियों और प्रभावित क्षेत्रों के जीवन में खास महत्व है। इस बीच स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थापित स्वागत केंद्र भूकंप पीड़ितों से भरे हुए हैं और सहअस्तित्व मुश्किल होने लगा है। इतने सारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त सेवाओं के साथ ये कुछ काम चलाओ संरचनाएं हैं। स्थानीय कलीसियाएं भूकंप पीड़ितों को भौतिक सामग्री और आध्यात्मिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। विश्वव्यापी कलीसिया की ओर से भी उनकी मदद की जा रही है। फादर ने कहा कि जितना संभव हो हमारे विश्वासों के बीच सामान्य स्थिति लाना महत्वपूर्ण है। 1 माह बाद अब भी इस बड़े कॉलेज में लोगों के लिए पर्याप्त स्थान की कमी है, शौचालय काफी नहीं है एवं स्वच्छता की काफी समस्या है। यही कारण है कि लोगों को यकीन दिलाना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने घर लौट सकें। फादर ने कहा, सबसे बड़ा शत्रु है डर, जिसको सोशल मीडिया के द्वारा भड़काया जाता है। भूकंप के 1 माह बाद कलीसिया की प्रतिबद्धता समाप्त नहीं हुई है।
जो लोगों का स्वागत करने के साथ साथ भौतिक सामग्रियां प्रदान कर रही है। अलेपो में 11 ख्रिस्ती समुदाय मौजूद हैं। इन सभी ने सहायता कार्यों को समन्वय करने के लिए एक ख्रिस्ती एकता आयोग का गठन किया है। फादर ने कहा, जिन्होंने अपना घर खो दिया है उनकी मदद किराए के द्वारा की जाएगी। इस काम के लिए लंबा समय लगेगा क्योंकि कई सवाल हैं। ये इंजीनियर अन्य 4 लोगों से मिलेंगे जो कुछ दिनों में इटली से आने वाले हैं। वे भूकंप के बाद के काम के लिए विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा, उन्हें आधिकारिक तौर पर काम करने की अनुमति देने के लिए हमने अलेपो की नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है। वे सबसे पेचीदा मामलों से निपटेंगे। पिछले दिनों इटली के काथी धर्मदक्ष सम्मेलन चेय के मोनसिन्योर जुसेपे बत्तूरी और अंतर्राष्ट्रीय उदास सेवा के निदेशक फादर लियोनार्डो दी मौरो ने भूकंप स्थल का दौरा किया। फादर बहजात ने कहा, यह हमारे लिए एक आशीर्वाद था। यहाँ अलेपो में हमारे इताली मित्रों और भाइयों को देखना एक एकाकीपन की भावना को तोड़ने जैसा था, जो हर बीतते दिन के साथ बढ़ रहा था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भूकंप के कारण क्या हुआ है उसे ध्यान में रखना चाहिए। इस रास्ते को नहीं भुलाया जाना चाहिए। इस संबंध में फादर ने कहा कि मोनसिन्योर बातूरी और फादर दी मौरा ने जो देखा उससे वे बहुत प्रभावित हुए और खुद को भविष्य के सहयोग के लिए उपलब्ध किया। 2013 से आज तक चेई ने सीरिया में 17 परियोजनाओं के लिए 12 मिलियन यूरो से अधिक का आवंटन किया है, जिसमें ओपन हॉस्पिटल भी शामिल है, जो 2017 के मानवीय संकट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है और आज भी भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहा है। ईओर यानी धर्म सामाजिकों के कार्यों के लिए वैटिकन की संस्था को एक नया नियम मिला है, जो नए प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के संदर्भ में है। टकराव से बचने के लिए विभिन्न प्रबंधन कार्यालयों हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित नई भूमिकाओं के साथ संचालन व्यवस्था को सरल बनाया गया है और हितों को ध्यान में रखते हुए नए मानदंड जारी किए गए हैं। ईओर को निर्देशित करने वाले नियमों में 4 वर्षों बाद नवीनीकरण किया गया है। परिवर्तनों का उद्देश्य नियमों को नए प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के अनुरूप करना है, जिसमें केवल एक बार नवीनीकरण की संभावना के साथ 5 साल के शासनादेश शामिल है और गतिविधियों के दोहराव से बचने के लिए भूमिकाओं के साथ एक सरल प्रशासनिक संरचना को विभिन्न कार्यालयों के बीच अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह बदलाव संत पापा के एक प्रलेख में 7 मार्च को प्रकाशित किए गए नियम के साथ आया है, जिसने ईओर को नवीनीकरण प्रदान किया है। ईओर का उद्देश्य है चल और अचल संपत्ति की देखभाल एवं प्रबंधन, चाहे इसे किसी व्यक्ति को या धार्मिक अथवा परोपकारी मकसद से वैध लोगों को समर्पित किया गया हो। 2 प्रलेखों में निहित प्राथमिक परिवर्तन 5 साल के शासनादेश के संदर्भ में है और विभिन्न कार्यालयों के लिए इसका नवीनीकरण, जो केवल एक बार संभव होगा, इसलिए अधिकतम जनादेश 10 साल के लिए होगा। दक्षिण इटली में अप्रवासी रास्ते स्थल पर रविवार को करीब 5,000 लोगों ने क्रूज रास्ता प्रार्थना में भाग लिया। क्रूज रास्ता का संचालन महाधर्मदक्ष और इमाम ने किया, जिन्होंने एक स्वागत करने वाले और समावेशी यूरोप का आह्वान किया। भूमध्य सागर से अब तक करीब 70 शव बरामद किए गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 80 लोगों को बचा लिया गया है। उस तट पर जहां 70 अप्रवासियों के शव पाए गए हैं, उनमें से अधिकांश अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के अप्रवासी थे और जहां समुद्र की प्रचंड लहरों ने उन्हें बाहर फेंक दिया था। क्रोतोने के लोगों ने लकड़ी के एक भारी क्रूज के साथ क्रूज रास्ता किया। क्रूज टूटी नाव की लकड़ी से तैयार की गई थी। क्रूज को एक स्थानीय बढ़ाई ने तैयार की थी और इसे पल्ली में रखा जाएगा। पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस कहते हैं कि यह क्रूज उन्हें यीशु के क्रूज की याद दिलाती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।